आज की नशस्त जो है वैसे वो उसमें एक ज़ेली मौजू हम इंशाल्लाह बोर्डम एक मौजू है जिस पे हम बात करेंगे कि बोरियत क्या होती है और बोरियत का फिनोमिनन क्या है, बोरियत कैसे तहजीबों के अंदर बोरियत का दखल होता है, क्या होता है, इस पे थोड़ी सी कुछ बात करेंगे। तो एक ख्याल तो ये आ रहा था कि मैं सबसे पूछूं कि बोरियत का तजर्बा कितना होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी लेंथ क्या है, लेकिन जब मैं आगे इस पे गुफ्तगू करूँगा तो फिर मुझे ख्याल आया कि बेहतर है कि ये चीज़ मतलब हिजाब में ही रहे तो बेहतर है, मतलब इसको सामने आने से मुमकिन है कुछ नई दुश्वारियाँ पेश आ जाएं लोगों को, तो अभी हम ये वाला सवाल नहीं करते। हम ये जो 21वीं सदी है इसमें बोरियत का तजर्बा इंसान को, जैसे जैसे दुनिया दिलचस्प और रंगीन होती जा रही है और दिलचस्पियों और रंगीनियों में बढ़ती जा रही है, बोरियत का तजर्बा भी इंसान को कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप तारीख़ का थोड़ा सा जायज़ा लें और तारीख़ को ज़रा इस तरह से देखें, देखिए किसी भी दौर की सबसे रिलायबल जो हिस्ट्री होती है वो लिटरेचर में प्रिजर्व होती है, वो अफसानों में और कहानियों में और बाज़ औक़ात नज़मों में फ्रोज़न हो जाती है, उसको सेव कर लिया जाता है। और जो हिस्टोरियंस जो अपनी तहरीर में चीज़ें कलमबंद करते हैं वो हिस्ट्री की एक और शक्ल होती है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि बोरियत जो है, अगर आप कदीम तहजीबों में कहानियों का जायज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि बोरियत का तजर्बा बादशाहों को कभी कभी हो जाता था, या बोरियत का तजर्बा जो है वो शहज़ादों को हुआ करता था। आम आदमी की ज़िंदगी में बोरियत का तजर्बा आपको रिवायती तहजीबों में इसका तजर्बा बहुत कम सुनने में आएगा। आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसका ये कोई मसला था। अच्छा, इस वक्त हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ आपको ऐसे इश्तहारात देखने को मिलते हैं कि अच्छा फ़लाँ चीज़ खाओ और बोरियत मिटाओ, फ़लाँ चीज़ करो और बोरियत मिटाओ। तो बोरियत जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी स्पेंडिंग की यानी खर्च करने की जो लाइकलीहुड है वो बोरियत के अंदर उसका इम्कान पैदा होता है, उतना किसी और कैफियत में नहीं होता। वो बहुत मतलब बोरियत को कॉम्बैट करने या बोरियत से नबर्द आजमा होने के लिए इंसान किसी भी कह लीजिए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। मेरी बोरियत का, मुझे अपनी बोरियत को ख़त्म करना है, बोरियत का तजर्बा उसको उसको बहुत ज़्यादा एक परेशान किए हुए। हाँ, बोरियत को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बल्कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं बोरियत को डिफ़ाइन करूंगा अभी, लेकिन आपसे मैं शुरू में जानना चाहूं अगर कि आपके ख्याल में बोरियत क्या है। मैं ये सवाल बावजूद नहीं पूछ रहा कि बोरियत का तजर्बा किसी को होता है या नहीं होता, और होता है तो कितना होता है, फ्रिक्वेंसी क्या है और बोरियत की लेंथ क्या है, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं आगे जो बातें बताने जा रहा हूँ उसके बाद फिर हो सकता है कि ये एक मुनासिब ना मालूम हो। लेकिन बोरियत का परसेप्शन क्या है आपके जहन में? वॉट इज़ बोर्डम, अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या हो जाए? यकसानियत हो जाए। ठीक है, बेजारी। ठीक है, यकसानियत के नतीजे में एक बेजारी का सा एक एहसास होता है जिसको आप बोरियत से ताबीर कर रही हैं। और कोई बताए? कोई ठीक है,
किसी काम को ना करने का जी चाहना कि जी नहीं चाहता करें या बोलें।
ठीक है, ठीक है। तो एक आपने कहा कि बोरियत जो है वो किसी काम के नापसंदीदा होने का नतीजा हो सकती है, या एक ख्याल ये आया। एक आपका कहना यह है कि किसी भी काम को करने का दिल ना चाहना, ठीक है, ये बहुत। और बताइए।
सर, अगर एक ही
रूटीन हो इंसान का, या एक ही चीज चली चली जा रही हो, तो उससे भी इंसान बोर हो जाता है।
अल्लाह करे कि हो, हमारी जो शहरी ज़िंदगी है उसमें जो इंसानों का बड़ा रेवड़ है वो एक ही तरह के लाइफ साइकिल के अंदर जुटा हुआ है और उससे बोर नहीं हो पा रहा। लेकिन आपकी अच्छी ख्वाहिश है इसमें हो जाए अल्लाह करे कि बोर, और तोड़ दे उस को। अच्छा, तन्हाई के नतीजे में बोरियत हो रही है, ये एक ख्याल है। ठीक है, और बताइए, यानी रिश्ते जो हैं वो। अच्छा, ये अभी आप लोग अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं, मैं अभी इस पे अपना ख्याल दूंगा अभी। और बताइए, बोरियत किसे कहेंगे? और बोरियत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम? बोरियत कोई प्रॉब्लम है?
छोटा प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसा वो नहीं है। आप किसी काम में शुरू हो जाए, आपको बोरियत खत्म हो जाती है। आपको इंटरेस्टिंग काम है कोई आपका, तो आप
किसी काम को बार बार करना और रोजाना की बुनियाद पर करना, उससे भी बोरियत हो जाती है। या फिर यह अगर आप अगर फालतू बैठे हैं तो उससे भी बोरियत हो जाती है, क्योंकि फालतू ऐसे बैठना नहीं चाहिए इंसान।
ठीक है,
किसी काम को बगैर मकसद के करना,
उसके नतीजे में बोरियत होती है।
सेटिस्फेक्शन, मसरूफ हैं लेकिन बोरियत महसूस हो रही है कि पता नहीं कुछ चीज की कमी है, तो शायद वो उसका करने का मकसद वाज़े नहीं है।
ठीक है, ठीक है, और बहुत खूब। तो ये जो एक तो मामला ये है, देखिए अगर हम बोरियत के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ले लें, एक जो एस्पेक्ट ये बयान हुआ कि हम किसी काम को करते चले जा रहे हैं और उस काम के करने से हमारा दिल भर गया है, अब हम बोर हो गए हैं, अब हम बेजार हो गए हैं। बोरियत एक बेजारी के माने में जब बयान हो रही है कि अच्छा भाई इतना ये काम कर लिया कि अब समझ नहीं आ रहा, मज़ीद करने का दिल नहीं चाह रहा, तो ये एक स्टेट है बोरियत की। लेकिन इसके अंदर भी एक और बात है जिसको अभी हम ज़रा सा देखते हैं। बोरियत की एक शक्ल ये बयान हुई कि वो आप किसी काम को पसंद नहीं कर रहे तो आप कह रहे हैं कि आप बोर हो रहे हैं, वो एक तो उसे उकताहट कह लेंगे, इसे बेजारी कह देंगे। और अगर हम खालिस बोरियत को ज़रा ढूंढें कि वो खालिस बोरियत क्या है, तो बोरियत असल में जो सबसे तकलीफ़दे बोरियत है ना, जो हमारी उसकी शक्ल वो है जिसमें आप को समझ ही ना आए कि आप क्या करें। यानी आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ जाए जिसमें आपके पास मोहलत अमल तो हो, अमल सुझाई ना दे। ठीक है, यानी आप चलते चलते किसी ऐसी जगह पर आ जाएं जहां आपके पास मोमेंट्स अवेलेबल हों, एक्सपीरियंस समझ में ना आता हो। ठीक है, तो आपके पास आपको समझ ना आए कि मैं इन मोमेंट्स को कहां यूटिलाइज करूं, आपके पास आपको वक्त ज़्यादा लगे, आपके आप वक्त ना कट रहा हो, ये जो कैफियत है ना। अच्छा, वो जो बात है कि आप कोई काम करते, या यकसानियत वाली बात भी एक चीज़ थी, यकसानियत कि भाई एक ही जैसी चीज़ देख देख के, मोनोटनी देख देख कर यकसानियत, तो हमारे जहन की साख्त ऐसी है कि वो हर वक्त मुस्तैद रहता है, हर वक्त एक्टिव रहता है। हमारा जहन जो है ना वो पैसिव स्टेट में आसानी से जाना कबूल नहीं करता, तो हमारा जहन जो है वो मुस्तकिल एक्टिव हालत में रहता है। लेकिन उसके साथ एक कह लीजिए, एक जहन का एक कह लीजिए फीचर ऐसा है, वो ये चाहता है कि उसे मोनोटनी से वो ग्रेस करना चाहता है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और हम थक जाएं तो उसके बाद हम कुछ ना करना चाहें, बल्कि हम कोई दूसरी एक्टिविटी करके अपने आप को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जहन जो है वो क्योंकि आप जो एक्टिविटी ए कर रहे थे उसमें जहन का जो गोशा आप इस्तेमाल कर रहे थे, अब एक्टिविटी बी करने के नतीजे में कुछ और आप किसी और अंदाज से काम करेंगे, तो आपका जहन जो है वो ब्रेक नहीं चाहता, असल में आपका जहन चेंज चाहता है, आपका जहन एक्टिविटी स्विच करना चाहता है, आपका जहन जो है वो पॉज डिमांड नहीं करता। यानी वो ये नहीं कहता कि मुझे पॉज कर दो जहनी अमल को, बल्कि वो स्विच कर दो ये एवेन्यू, इस एवेन्यू से निकल के किसी और एवेन्यू में चले जाओ, किसी और डोमेन में चले जाओ, कोई और, जहन को मौजू बदलने की हाजत तो होती है, जहन को अपने जो फिक्री प्रोसेस है उसको रोकने की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये जहन की, और ये जहन की बड़ी ज़बरदस्त खूबी है कि जहन रुकता नहीं है, थमता नहीं है, सोते में भी जहन चल रहा होता है तो जहन जो है वो रुकता नहीं है, जहन एक्टिविटी स्विच करता है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी बोरियत से ताबीर नहीं कर रहा, ये तो बहुत नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। मैं जिस बोरियत की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो गैर फितरी है, मैं जिस बोरियत की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो एक गैर फितरी ज़िंदगी और एक उसकी उस बोरियत की पैदाइश जो होती है वो मकसदियत और मानवियत की महरूमी से होती है, या एहसास मानवियत की कमज़ोरी से होती है। यानी या तो लाइफ के अंदर सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंगफुलनेस कमज़ोर हो जाए, या अगर आप किसी कॉज से जुड़े हुए भी हैं तो भी उसके साथ उसका जो एहसास है वो कमज़ोर हो जाए। मतलब आपको बोरियत का तजर्बा, आप किसी दौर के बड़े आदमी की बायोग्राफी में ये नहीं जाने, ये नहीं आपको मिलेगा कि वो कायद आज़म बोर हो रहे थे या अल्लामा इकबाल बोर हो रहे थे। क्योंकि एक और चीज़ जो इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, बोरियत का तजर्बा हमें उस, यानी अगर मैं ये कहूँ कि बोरियत की अब दो अकसाम बयान कर लेते हैं। बोरियत एक किस्म वो है जिसको मैं नेचुरल और नॉर्मल कह रहा हूँ, जिसको मैं, जिस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, जिसको मैं हदफ़ तनकीद भी नहीं बना रहा। यानी ये वो बोरियत है, असल में ये बोरियत नहीं है, वो उकताहट है और बेजारी है। अब उसकी क्या शक्लें हैं, मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना भिंडी गोश्त खा कर आप थक गए हैं और अब आप नहीं चाहते कि आज भिंडी गोश्त खाएं, रोज़ाना बिरयानी खा के या रोज़ाना लौकी खा के या रोज़ाना एक ही काम करके आप थोड़े से उकताहट हो गई है, आप चाहते हैं कुछ और करें। तो ये, या एक ही मज़मून पढ़ कर अब आप थोड़े से थक गए हैं, अब चाहते हैं कि वो कुछ और करें। तो एक्चुअली इसको मैं उस तरह की बोरियत से ताबीर नहीं कर रहा मैं, जो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि आप किसी इंसान को या किसी मौजू को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एक्टिविटी को नापसंद करते हैं, उस तरफ आपकी रग़बत नहीं है, आप नहीं चाहते कि ये आप करें, तो ये भी इसको भी मैं उस वाली बोरियत से ताबीर नहीं कर रहा जो मेरे आज के मौजू, यानी आज के मौजू वाली जो बोरियत है वो कुछ और है। यानी अगर ये, इसको हम ये कहेंगे भाई ठीक है आपका मिलान नहीं है, आपका रग़बत नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, यानी अदम दिलचस्पी और बोरियत एक चीज़ नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि नापसंदीदगी का रवैया और बोरियत, ये दो एक चीज़ें नहीं हैं। यानी डिसलाइकिंग को बोर्डम से इक्वेट करना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। या जहन अगर किसी चीज़ से फेडअप हो गया है तो इसको भी बोरियत से ताबीर करना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जिस बोरियत की बात कर रहा हूँ वो कुछ और ही सरकमस्टांसिस में पैदा होती है, और वो बोरियत कौन सी है, वो बोरियत जो है उसकी पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि वो मानवियत और मकसदियत की महरूमी के सरकमस्टांसिस में या हालात में पैदा होती है। दूसरी बात उस बोरियत की ये है कि जब इंसान को अपने आप से मुलाकात कह लीजिए, वो अपने आप से मिलने पे राज़ी ना हो, अपने आप अपने अंदर झांकने पे आमादा ना हो, और अपने आप से गाफिल रहने में उसको एक कह लीजिए आसानी महसूस होती हो, अपने आप पर नज़र डालने में उसको या तो कुछ अंदेशे हों या फिर उसको कुछ तरद्दुद हो, तो फिर भी बोरियत पैदा होती है। क्योंकि बोरियत जो है असल में जिसे हम बोरियत का पीरियड कहते हैं, पीरियड ऑफ बोर्डम कहते हैं, एक्चुअली वो सबसे कीमती अपॉर्चुनिटी होती है रिफ्लेक्ट करने की, अपने आप से मिलने की, अपने साथ रहने की, अपने आप को जानने की। तो चूंकि आप जब इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो आप बोरियत का शिकार होते हैं। यानी बोरियत का एक शान नज़ूल ये हुआ कि आप मकसदियत और मानवियत से दूर खड़े हैं। बोरियत का दूसरा कह लीजिए बड़ा सबब ये हुआ कि आप अपने आप को अपने आप से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, आप अपने आप से गुरेजा हैं। ये बोरियत का दूसरा बड़ा कह लीजिए। तो अभी जो हमारी बोरियत का एक तीसरा सबब भी है, और बोरियत का तीसरा सबब यह है कि हमारी ज़िंदगी बोरियत, यानी जिस बोरियत को मैं निशाना बना रहा हूँ और जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये बोरियत जो है ये फितरी नहीं है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फितरी नहीं है तो, और बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी का नतीजा है, ठीक है, यानी अननेचुरल लाइफ स्टाइल का आउटकम है। और वो जो बोरियत जिसको हम बोरियत समझ रहे थे उसको मैं उसको बोरियत नहीं कह रहा, मैं उसे कुछ और कह रहा हूँ। तो इसको मैं, तो उसका जो तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है, जब हमारी ज़िंदगी में प्लेजर और इंटरटेनमेंट कदर का दर्जा इख्तियार कर ले और हमारे लिए किसी काम को इख्तियार करने और किसी काम से गुरेज करने का सुप्रीम क्राइटेरिया ये बन जाए कि ये मज़े का है या नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी का, यानी फिर बोरियत की खाइयाँ हमारी ज़िंदगी में नागुज़ीर हो जाती हैं। फिर ये अनअवॉइडेबल हो जाता है कि आप बोरियत की खाई से नहीं गुज़रेंगे। वो लाइफ ऐसी होती है। असल में हम अगर मैं ये दो लफ्ज़ कहूँ, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल, आज के नौजवान को मुस्तकिल ऐसे कंटेंट की, ऐसे एक्सपीरियंस की और ऐसी एक्टिविटी की तलाश है जो उसके लिए मज़े का हो, इंटरेस्टिंग हो। और अगर असल में हम ये जो 21वीं सदी ने, बल्कि 20वीं सदी ने इंसानों को ओवरली इंटरटेन किया है और कॉन्स्टेंटली टेम्प्ट किया है, तो हम एक ओवरली, यानी हम कंटिन्यूसली टेम्प्ट किए गए हैं, ओवरली इंटरटेन किए गए हैं। तो एक आप सोचिए ना कि वो नस्ल जो मुस्तकिल प्रोवोक की गई हो, इंटरटेन की गई हो, टेम्प्ट की गई हो किसी लज्जत के लिए, और प्लेजर मैक्सिमाइजेशन जो है वो उसकी, उस दौर की एक बड़ी नुमाया सिफत हो, तो उसके लिए कोई भी तजर्बा इसलिए अहम नहीं होता क्योंकि वो बामानी है, बल्कि वो तजर्बा, उस तजर्बे का होगर वो इसलिए होता है क्योंकि वो पुर लज्जत है, वो उसमें प्लेजर है। तो इफ़ इट इज़ प्लेजरेबल इट मस्ट बी डन, इफ़ इट इज़ नॉट प्लेजरेबल, if it is not pleasing, if it is not entertaining, if it is not interesting, if it is not keh lijiye ek jise hum kehte hain ke maza factor jo hai wo mani factor ke upar ghalib aaya hua hai, yani uska baamani hona aur uska mazedar hona, wo hum kehte hain na yaar maza nahi aaya, maza hai ya nahi hai, agar maza hai to karenge bhale wo jaisa bhi ho, यानी उसका नाफ़े या गैर नाफ़े होना उसके इख्तियार करने या उससे गुरेज करने की कसौटी नहीं बना, उसका मानवी होना या गैर मानवी होना उसे इख्तियार करने और उससे गुरेज करने की कसौटी नहीं बना, लेकिन उसका लजीज होना, उसका मज़ेदार होना। अच्छा, जब इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि लज्जत परस्त सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, जहाँ लज्जत को एक बड़ी कदर का दर्जा हासिल हो जाता है, यानी प्लेजर जो है वो कदर बन जाती है, इंटरटेनमेंट जो है वो कदर बन जाती है, यानी इंटरटेनमेंट जब कोई चीज़ कदर बन जाती है ना, तो फिर उसकी हमारी लाशऊरी कुव्वतें उसके हुसूल में कारफरमा हो जाती हैं। हम अपने आप को, अगर आप किसी चीज़ को अपनी कदर बना लें तो आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपके वजूद के कौन से गोशे उसकी तरफ खुद ब खुद लपकते हैं। तो आप यानी हमारा एक शऊरी वजूद है, हमारा एक लाशऊरी वजूद है, यानी हम थोड़े से अपने हाथ में हैं, बहुत सारे अपने हाथ में नहीं हैं। तो जो हमारा वो इलाका जो हमारे हाथ में हर वक्त नहीं रहता उसे हम लाशऊर से ताबीर कर लेते हैं, हमारा वो इलाका जो हमारे हाथ में काफ़ी हद तक है उसे हम शऊर से ताबीर कर सकते हैं। तो हम पूरे के पूरे उसकी तरफ लपकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे के पूरे उसकी तरफ बेताब हैं। यानी वो जैसे शम्मा के ऊपर परवाना लपकता है तो वो एक बेखुदी की कैफियत में होता है, तो हम उस लज्जत की तरफ लपकते हैं। तो ये तीन डायमेंशंस हैं जिस बोर्डम की मैं बात कर रहा हूँ। पहली डायमेंशन ये है कि मानवियत और मकसदियत से महरूमी जो है वो बोर्डम लेके आती है, और ये वो बोर्डम है जो बहुत सारी नफ्सियाती अवारिस की भी आगे चल के वजह बनता है। यानी जो डिसिप्लिन ऑफ कह लीजिए साइकोलॉजी है वो हेल्दी एक्सपीरियंस नहीं कहता बोर्डम को, वो उकताहट को, बेजारी को कोई बहुत हेल्दी एक्सपीरियंस नहीं कहता, बल्कि किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर ये किसी इंसान में पैदा हो जाए तो उसे एक सिकनेस, टाइप ऑफ सिकनेस के तौर पर क्लासिफाई करता है कि ये एक एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिस टाइप के बोर्डम की मैं बात कर रहा हूँ उसके तीन डायमेंशन हो गए। पहला डायमेंशन ये है कि मकसदियत और मानवियत से दूरी का एहसास या उससे महरूमी। दूसरा डायमेंशन जो है वो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप से मुलाकात, यानी आप अपने आप को देखने, अपने आप को टटोलने, अपने अंदर झांकने, अपने आप से मिलने से गुरेजा हो जाएं। आपको आप दोस्त से मिलना, आप दोस्त से मिलने में सहूलत महसूस करें, आप अनजान आदमी से भी मुलाकात करने में राहत महसूस करें, लेकिन आप अपने अंदर झांकने और अपने अंदर उतरने में दुश्वारी महसूस करें। यानी एक मुस्तकिल तरद्दुद अपने आप को पाने, अपने आप को समझने और अपने वजूद की असल पे गौर करना, ये आपके लिए दुश्वार हो। आपको आपके लिए जलवत का तजर्बा खलवत के तजर्बे से आसान हो जाए, मज़ेदार हो जाए, खलवत आपके लिए तकलीफ़देह हो जाए, यानी तन्हाई जो है वो आपके लिए ताज़ियाना बन जाए। ठीक है, ये वो सेकंड डायमेंशन है। ठीक है, थर्ड डायमेंशन जो है जिसकी मैंने बात की ये वो है कि लज्जत या तफरी या मज़ा आपके लिए कदर का दर्जा इख्तियार कर लें, और एक ऐसी लाइफ हमारी हो कि अगर हम कहें कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस वर्सेस इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, यानी किसी काम को करने या ना करने का क्राइटेरिया ये ना हो कि वो नाफे है या गैर नाफे है, या वो यानी बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, या वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, बल्कि सिर्फ एक ही हो और वो ये है कि वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है। जब कौमें इस सतह पर आ जाती हैं तो अब आप देखिए कि चीज़ें यानी वहाँ पर मामलात कैसे होते हैं। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के बेचने के लिए बस इतना काफ़ी है कि लोगों को कह दो कि जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, और लोग कहेंगे अच्छा मज़ा आएगा, और मज़े को वो बोर्डम का अपोज़िट समझते हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी के दो ही फेजेस होते हैं, मज़ा या बोरियत, मज़ा या बोरियत। तो हमारी पूरी कोशिश होनी, हमारी शऊरी और लाशऊरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम हालत मज़े में रहें, हालत बोरियत से निकलें, और बोरियत को कॉम्बैट करने के लिए जो प्राइस हम दे सकते हैं वो दें। तो फिर आपको पता लगता है कि फिर मतलब आप एक अजीब, एक ऐसी किस्म के इश्तहारात आप देखते हैं जो पूरी कौम की जो इंटेलेक्चुअल कह लीजिए हालत है उसके ऊपर एक मजाक है उसको। यानी क्या आप, यानी हम इसे तौहीन अकल का केस नहीं समझ पाए ना, कि जब हम इस तरह का ऐड देखते हैं कि ये खाओ और बोरियत मिटाओ, ये तौहीन अकल का केस है ना। मतलब अकल की तौहीन होती है इस इश्तहार को देख के या नहीं होती, लेकिन चूँकि अकल घास चरने चली गई है तो किसी भी चीज़ की तौहीन नहीं होती, हमें बिल्कुल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये बहुत तकलीफ़देह बात है ना। तो आप देखिए कि पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि वो जो कंस्यूमरिज्म और स्पेंडिंग होती है उसके पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बोरियत से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं। ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं। आप जब तलाश करें आपको पता लगेगा कि क्या बोरियत सुन्नत है, तो आपको पता लगेगा नहीं, बोरियत सुन्नत नहीं होती, क्योंकि वो तो गारे हरा में और गारे हरा में अभी आप जाएँ तो एक घंटा मैंने सुना है लगता है नीचे से ऊपर जाने में, जो वो जिस पहाड़ी के ऊपर है वहाँ रास्ता भी मुश्किल है। तो या तो एक एक इंसान जो है वो खलवत का तजर्बा नेमत के तौर पर ढूंढता था, यानी खलवत कहते हैं तन्हाई को, खलवत कहते हैं व्हेन आई एम एबल टू व्हेन आई एम विद माय ओन सेल्फ, व्हेन यानी जब मुझे किसी और की मौजूदगी अपने आप से, किसी और की मौजूदगी मुझे अपने आप से मिलने में हायल ना हो, यानी आप मुझ में हायल ना हो, इस एहसास को आप कहते हैं ना, मतलब खलवत। अभी तो हम जब लोग होते हैं तो हमें एक तो हमारे साथ दो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एक तो हमें मास्क पहन के बैठना पड़ता है क्योंकि लोग होते हैं, तो खलवत वह है जिसमें आप अनमास्क्ड होते हैं, आपने सारे मास्क उतार दिए होते हैं, आप वो होते हैं जो आप होते हैं, आपको बनना और दिखने और बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपकी तवानाई का रत्ती बराबर भी दिखने और बनने की कोशिश से में नहीं सर्फ होता, तो आप ऐसे होते हैं, आप वो होते हैं जो आप होते हैं, और फिर आप अपने आप से मिलते हैं तो आपको पता लगेगा ये तो बड़ी बड़ा यानी ढूंढते थे ये लोग, यानी आप कहीं ढूंढें कि वर्ड्सवर्थ को बोर्डम का तजर्बा हुआ हो, आपको नहीं पता लगेगा। बल्कि जब दुनिया दिलचस्प होना शुरू हुई और रंगीन होना शुरू हुई, दुनिया जो है ना वो मुस्तकिल मज़ेदार और दिलचस्प लेकिन तकलीफ़ दे बनती जा रही है, यानी ये इस तरह से दुनिया इमर्ज हो रही है। तो कदीम यूनानी कदीम चीनी तहजीब में एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता था, और वो एक्सप्रेशन ये था जिसको वो कर्स के तौर पर कहते थे, जिसको वो कहते थे चाइनीज कर्स, और यानी एक कदीम चीनी तहजीब में अगर किसी इंसान को लानत मलामत करनी हो या उसे गाली देनी हो तो ये जुमला कहा जाता था जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और वो जुमला ये था, उसका तर्जुमा ये है कि मे यू लिव इन एन इंटरेस्टिंग प्लेस, खुदा करे कि तुम बहुत दिलचस्प जगह पे रहो, यानी अगर आपसे मेरी लड़ाई हो जाए और मैं कहूँ कुट्टी, और फिर मैं कोई ख़राब बात आपके लिए कहूँ तो मैं कहूँ कि भाई खुदा करे कि तुम बहुत दिलचस्प जगह पर रहो। और ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो फ्रेज़ था, इसको गाली और कर्स का दर्जा, यानी इसे चाइनीज कर्स कहा जाता था। तो ये इसमें कर्स वाली बात क्या थी? आज अगर हम ये किसी से कहें खुदा करे कि आप बहुत दिलचस्प जगह पे रहें, बहुत मज़ेदार जगह पे रहें, तो आप कहेंगे अच्छा जहाँ पे टक हो, जहाँ नूडल्स हों, आप ऐसी जगह बता रहे हैं, अच्छा जो क्योंकि ऐसी जगह होती हैं, यानी वो क्योंकि इश्तहार यही बता रहे, या आप कह रहे हैं कि मैं बुर्ज खलीफा के नीचे बैठा रहा, या आप चाह रहे हैं मैं ईफिल टावर के साथ बैठा रहा, आप पेरिस में दुबई में मुझे देखना चाहते हैं, वो बहुत वो खुश होगा, वो आपका अच्छा शुक्रिया थैंक यू ऐसे खुश होगा वो। लेकिन पहले इसको गाली क्यों समझा जाता था? इसमें कर्ज वाली बात क्या थी? इसमें क्या बात थी? इसमें मे यू लिव इन एन इंटरेस्टिंग प्लेस, इसमें बुरी बात क्या थी? ये जुमला किसी को बुरा क्यों लग रहा था? वो कौन सी तहजीब थी जहाँ ये जुमला बुरा था? हाँ चाइनीज तो थी, लेकिन उस तहजीब के इंसान को, उस दौर के इंसान को ये बात बुरी क्यों लग रही थी? जी वो जब दुनिया मुजयन हो जाएगी तो आप खारिज बीनी में इतने मगन हो जाएंगे कि दाखिल बीनी से गुरेज करेंगे, यानी इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हम दाखिल बीनी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से यानी अवॉइडेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पैदा होगी ना आप, यानी जब दुनिया इतनी दिलचस्प हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी, तो आप दुनिया में गुम हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ آئے کیوں ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے. آپ اپنی منزل آپ کی نگاہ سے ہٹ جائے گی اور راستے کا پتھر آپ کو اتنا دیدہ زیب لگے گا کہ آپ راستے کے پتھر کو اپنی منزل سمجھ کر اسے بت بنا کر سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پرابلم ہے آج کے دور کا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی راستے کا پتھر آپ کا آپ کی منزل کا درجہ اختیار کر جائے. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ ہے وہ فینومینن. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیا خیال ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ بھائی یہ جو اتنی انٹرسٹنگ جگہ پر مجھے بھیج رہے ہو تو یہ مطلب یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرنے، غور و فکر کرنے، اپنے آپ سے ملاقات کرنے، انٹروسپیکشن کرنے کی پاسبلٹیز ختم کر دیتا ہے نا. تو اتنا انٹرٹیننگ ہوتا ہے، اتنا یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی انسان کے لیے اس وقت یہ سوچنا زیادہ آسان ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور جو سوچتا ہوں وہ کیوں سوچتا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہ کیسے سوچتا ہوں، یا اس کے لیے یہ سوچنا زیادہ آسان ہوا ہوا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، فلاں کیا سوچتا ہے میرے بارے میں، فلاں میرے بارے میں کیا اور کیوں اور کیسے سوچتا ہے، یا میں جو سوچتا ہوں وہ کتنا مناسب سوچتا ہوں اور جو میں سوچتا ہوں وہ کیا سوچتا ہوں. آپ کے لیے کیا چیز سوچنی آسان ہوئی بھی؟ ہر انسان دوسرے کے ذہن میں مطلب چلنے والی سوچ کے بارے میں زیادہ یعنی دیکھے نا. تو وہ بینائی، وہ عدسے جو اندر بھی کچھ دکھا دیتے تھے اور باہر تو دکھاتے ہی تھے، دیکھیں نا وہ اب وہ ہم ان عدسوں سے محروم ہو گئے ہیں. ہم ایک ایسی یعنی ہماری آنکھ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف باہر دیکھنا چاہتی ہے. ہمارے ذہن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو آبجیکٹ بنائے بغیر ساری تھنکنگ پروسیس جاری رکھنا چاہتا ہے. یعنی ہماری تھنکنگ کا آبجیکٹ ہمارا ذہن نہیں بن پایا. اینڈ دس از اے بگ پرابلم. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف تھنکنگ نہیں بنایا. ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف سائٹ نہیں بنایا. ہم نے کب بنایا؟ اور چونکہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں لہٰذا ہم خلوت کے یا تنہائی کے یا لونلینس کے اس تجربے، یا ہم کہہ لیجئے وہ جو اس تجربے کو ہم بامانی نہیں بنا پا رہے، اس ایکسپیرینس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں. بتائیے سوال. تو بہت اچھا کر رہی ہیں، میری بوریت مٹا رہی ہیں. سوری،
دنیا کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ یہ ایسی رنگین جگہ ہے جہاں پر تم کھو جاؤ. ٹھیک ہے، تو ہر دور میں انسان کا یہ چیلنج رہا ہے کہ اس کو وہ دنیا کی رنگینی میں کھونے کے امکانات ہر دور میں موجود ہیں. یعنی انٹرٹینمنٹ کے فیکٹرز ہر دور میں مختلف رہے ہیں. مثلا قدیم یونانی یا دوسری تہذیبوں میں جو گلیڈیٹر اور وہ سارے کھیل تماشے ہوتے تھے تو ان کی وہ فارم تھی. تو ہر دور میں مختلف انٹرٹینمنٹ کے فارمز ہیں نا، تو اس دور میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہر دور میں رہا ہے اور انسان کی اپنے آپ سے ملاقات یا خلوت کا جو وہ ہے کہ موقع ملے گا یا نہیں، یہ چیلنج تو ہر دور کا ہے، ہر دور کے انسان کا. تو بوریت کا فیکٹر ہر دور میں رہا ہوگا.
بہت خوب، بہت اچھا سوال.
یعنی یہ کوئی نئی چیز اس دور کے لیے تو نہیں ہے نا،
دیکھیے بہت بہت ہو. تھینک یو، بہت اچھا سوال. اس کو بالکل اچھا کیا آپ نے، اس طرح اور یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. دیکھیے، نتھنگنیس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے لیے پرابلم نہیں تھا. آج کے انسان کے لیے نتھنگنیس پرابلم ہے. مطلب نتھنگنیس کسے کہتے ہیں؟ نتھنگنیس یہ کہ نتھنگنیس کہتے ہیں آپ کی وہ اسٹیٹ جس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود مطمئن ہوں. آپ فراغت آپ کو کاٹے نہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو قدیم روایتی تہذیبیں، یہ بات درست ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ جو آپ بہت اچھی اگزامپل جو گلیڈیٹر کی آپ نے دی اور جو دوسری کھیل بالکل رومنز نے، جسے ہم بالکل صحیح ایمفیبین تھیٹر جو تھا یا جو بل فائٹنگ تھا، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں، بالکل صحیح ہے یہ بات. اب بالکل एम्फीबियन थिएटर क्या होता था, एम्फीबियन थिएटर जो था वो किसी दरिंदे और इंसान की लड़ाई होती थी। बुल फाइटिंग जो है वो तो जब इंसान थोड़ा सा यानी उसको रहम आया इंसान को, तो फिर वो उसने सोचा कि अच्छा हम थोड़ा सा दूसरे अंदाज से किया, लेकिन उससे पहले तो दूसरे अंदाज से एम्फीबियन थिएटर एक होता था, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। रोमन्स ने जो इस वक्त जो आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है यानी खेल जो था वो आज़ाए जिस्मानी की वर्जिश और उनको मुस्तैद रखने के सुप्रीम ऑब्जेक्टिव के साथ ना हो, बल्कि बड़े बड़े जत्थों को इंटरटेन करने की ख्वाहिश से हो, तो ये रोमन्स का ने शुरू किया। जब आपने स्टेडियम्स बनाए और आपने स्पोर्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स की जिससे लोग इंटरटेन हुए, यानी आपने स्पोर्ट्स का प्राइमरी फंक्शन जो है वो इंटरटेनमेंट बनाया, और स्पोर्ट्स का जो फिज़िकल एक्टिवनेस है वो स्पोर्ट्स का सेकेंडरी फंक्शन हो गया। ये इसकी इब्तदा रोमन्स ने की। उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस स्पोर्ट्स की और जुल्म का पहलू भी होता था जिससे इंसान, वो एक अलग कैफियत थी वो इंसान की। लेकिन इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि पूरी तहजीब इंटरटेनमेंट को या प्लेजर मैक्सिमाइजेशन को कदर बना ले, ऐसा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ है पूरी सोसाइटी उसको कदर मान ले ना। मैं अभी आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए 150 साल पहले तक इंटरटेनमेंट जो है या मज़ा जो है वो कदर का जो दर्जा इस मज़े को इस वक्त हासिल है ना, मज़े यानी इस वक्त आप नमाज में भी मज़ा तलाश कर रहे हैं, यानी आप वहाँ खड़े हैं आप कह रहे हैं नमाज पढ़ो, मज़ा नहीं आ रहा। नमाज मज़े के लिए नहीं पढ़ी जाती, एक अलग डिस्कशन है, लेकिन जो मज़ा वाला फैक्टर है उसकी उसको जो वैल्यू मिली है, और वो वैल्यू इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं है, वो कलेक्टिव पूरी पूरा सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर वो वैल्यू बन के उतर गया है। ये चीज़ 150-200 साल, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये तसव्वुर नहीं मिलता कदी रिवायती तहजीबों में कि आप कोई दवाई जो है ना, दवाई वो उस वक्त कबूल करेंगे जब वो मज़े की होगी, तो अब आपको फ्लेवर्स में मिलती है। पहले जब निमकोल आना शुरू हुआ था तो फ्लेवर में नहीं था, अब वो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी और लेमन फ्लेवर में भी है। इसी तरह और बहुत सारी, मतलब आपको दर्द की दवाई जो है वो चॉकलेट कोटेड मिल रही है, शुगर कोटेड मिल रही, मीठी और मज़े की मिल रही। तो ये आप कहते थे भाई ये आपको इस वक्त जो जो मज़े का फैक्टर है ना, यानी आप खाते थे तो आप खाते थे, ठीक है, आपको अच्छा लगता था, आपको गोश्त अच्छा लगता था, आप चीज़ें खाते थे, लेकिन जो आपके टेस्ट बड्स को प्लीज़ करने के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो इस वक्त खड़ी है ना, इसके लिए तो इतनी एफर्ट हो रही है। और ये स्टार्ट हुआ, देखिए यूरोप का जवाल टेस्ट बड्स को प्लीज़ करने वाले टेस्ट बड्स को प्लीज़ करने की खातिर सफ़र करने से शुरू हुआ है। मसाले ढूंढते हुए वो यहाँ आए थे, तो जिस वक्त वो मसाले ढूंढने के लिए निकले थे ना, वो उनका पीक था, और जब वो यहाँ आके फंस गए ना, उसके बाद उनका जवाल शुरू हुआ। उससे पहले तो 500-600 साल की तारीख है उनकी, जो ज़बरदस्त तारीख है, उसके अंदर वो अपना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर प्लेजर मैक्सिमाइजेशन जो है वो उनकी उस तरह वैल्यू नहीं बना। प्लेजर मैक्सिमाइजेशन पूरी की पूरी, ये तो एक प्लेजर सीख करना तो हर इंसान की फितरत के अंदर भी शामिल है ना, लेकिन इसको वैल्यू का दर्जा, इसमें फ़र्क है। वैल्यू का दर्जा का मतलब ये है कि अब इसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब इसका सामने कोई चीज़ आ जाएगी मैं उसको इस पर फोकियत नहीं दूंगा, ये बात है ना। यानी मिसाल के तौर पर मैं अब आपको एक बात बताऊं, 150 साल पहले तक किसी भी मरीज के इलाज में ये बात तयशुदा थी कि इलाज जो है ना वो परहेज का नाम होता है। मतलब अगर आपको आप परहेज नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात थी। आप नहीं तो आप ज़रा ढूंढें पूछें लोगों से,
इस वक्त अगर किसी इंसान को शुगर हो जाए और उसे केक बहुत अच्छा लगता हो और चॉकलेट्स अच्छी लगती हो, तो उसका इलाज ऐसे पॉसिबल होगा ना कि आप जितनी चाहें चॉकलेट खाएं, साथ में जितनी चाहें इंसुलिन लगाएं, इंसुलिन भी चॉकलेट कोटेड कुछ बना देंगे उसको, कुछ ऐसा उसमें खा के आपको चॉकलेट की फील आए, कुछ ऐसा कर देंगे, तो आपको जो चाहे, आपको दर्द की गोलियां जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मिलना शुरू हो जाएंगी, आप ऐसा लगेगा जैसे कैंडी चूस रहे हैं, तो इस हालत पे आपको पहुंचा देंगे ना। लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या जो यानी इंटरटेनमेंट सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कदर का दर्जा इख्तियार कर जाए, ये एक अलग मुकाम है। देखें एक बात मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात क्या होता है किसी सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल्स किसी गलत हरकत को करते हैं, ये हमेशा होता है, लेकिन सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो वैल्यू का दर्जा इख्तियार कर ले, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है, ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो इसके अंदर हम फ़र्क कर रहे हैं। तो आप देखिए, लोग इलाज करते थे, लोग अपना ट्रीटमेंट करते थे, लोग अपना सेहत के लिए काम करते थे, घर बनाते, बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन उसमें जो है वो, और देखिए इंटरटेनमेंट के साथ जो दूसरी चीज़ उसे आई है ना, वो है कन्वीनियंस, प्लेजर मैक्सिमाइजेशन और कन्वीनियंस, ये दोनों, बल्कि एक्चुअली ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा है, लज्जत और तन आसानी, ये जोड़ा है, ये दोनों सिस्टर्स हैं। और तो अगर आप कदीम तहजीबों की तरफ, जैसे हम जिस प्लेजर की बात कर रहे हैं, तो कदीम तहजीबों में कोई इंडिविजुअल यानी आप ज़रूर, आपके लिए मुमकिन है कि देखिए मैं आपको बताऊं, आपको शहद उस ज़माने में भी अच्छा लगता था, आपको गोश्त उस ज़माने में भी अच्छा लगता था, आपको अच्छी चीज़ खुशबू उस ज़माने में भी अच्छी लगती थी, आपको गीबत उस ज़माने में भी मज़े की थी, आज भी मज़े की है, लेकिन उस ज़माने में इंसान गीबत की खातिर इतनी कुर्बानी नहीं देता था जितना आज का इंसान दे लेता है, मतलब ठीक है, तो आज के इंसान की कुर्बानियाँ गीबत की खातिर जितनी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब। और ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर वैल्यू का दर्जा इख्तियार कर गई है, इसमें और उसमें फ़र्क है, ये बात समझ आ रही। तो हमने तीन डायमेंशंस पे बात की, और कोई सवाल, ऐसा कोई सवाल और भी करें, मतलब आप रुके नहीं, आप मतलब मज़ा नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, सवाल कीजिए जी। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे या कुछ, कोई साहब कुछ कह रहे हैं? इस वक्त कितने लोग हैं फायज़ा जो एक मज़े की बात बताऊँ, आपको नींद ना आ रही हो तो गोली मिल जाती है, आपको डिप्रेशन हो रहा हो तो उसकी भी गोली मिल जाती है, लेकिन जो बोरियत है और उकताहट और बेजारी है उसके लिए गोली एग्जिस्ट नहीं करती, आप मतलब क्या करें, इसको कैसे हैंडल करें, तो ये एक अजीब सी कैफियत है। और बोर्डम के लिए फिर वही है कि भाई नूडल खा लो बोरियत मिटाओ, फला बिस्किट खा लो, फला जूस पी लो, आप कितने इश्तहार आते हैं जिसमें बोरियत मिटाने, बोरियत चॉकलेट खा लो बोरियत मिटा लो, ये खाओ बोरियत मिटाओ, ऐसी टैग लाइन्स आपने देखी हैं? तो ये तौहीन अक़ल का केस बनता है ना, जिसमें इंसान जो है ऐसी टैग लाइन को, मतलब यानी देखें, अगर हम कोई यानी दानिशमंदी की तहजीब होती तो अच्छा खासा बड़ा धरना हम इस बात पे करते कि ऐसी टैग लाइन क्यों हमें सुनाई गई, मतलब बहुत बड़ा सेटिन इसके ऊपर हो सकता था ना कि भाई मतलब ये खाओ बोरियत मिटाओ, आपने हमें समझा क्या है, हम जानवर हैं क्या, आपने ये हम सू कर देंगे आपको, ये हमें अपनी तजलील महसूस हुई ऐसी बातों से, मतलब हमें ऐसा तो नहीं हुआ, क्या ख्याल? मज़ा ढूंढने, हम कॉन्स्टेंटली टेम्प्ट किए गए हैं, ओवरली इंटरटेन किए गए हैं, और प्लेजर मैक्सिमाइजेशन हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक वैल्यू का दर्जा इख्तियार कर गई है।
तो आपने जो जुमला कहा था कि हम कहते हैं कि नमाज में
नमाज में मजा नहीं। मजा और हम इस जुमले के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको रियलाइज नहीं कर पाए, बहुत अहम बात है। नमाज में मजा, मैं इसका प्रॉब्लम खोलूं अगर। हाँ, उधर दिल नहीं, तो देखें मजा जो है वो नफ्स की खुराक है, मानी जो है वो जहन की खुराक है, ठीक है। तस्कीन जो है वो पूरे वजूद को मिलती है, तस्कीन जो है वो रूह की, रूह का, यानी जिसे हम तस्कीन कहते हैं, जिसे हम कह लीजिए सेटिस्फैक्शन कहते हैं या करार कहते हैं या तमानियत कहते हैं, वो रूह का तजर्बा है। लज्जत जो है वो नफ्स का तजर्बा है, मानवियत जो है वो जहन का तजर्बा है। तो वजूद जो है वो पूरा वजूद की असल जो है वो रूह होती है, बदन नहीं होता। तो ये जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल देख लीजिए, आप कुरान का उसलूब, आप कुरान की नमाज के ऊपर जो बात है वो देख लीजिए, और आप उसके बाद जो ग्रेट मास्टर्स हैं उनको देख लीजिए, नमाज के पूरे नैरेटिव में मज़े का ज़िक्र कहाँ मिल रहा है। मज़े का ज़िक्र देखिए, मज़ा जब मज़ा आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सुप्रीम वैल्यू के तौर पर इमर्ज हुआ है ना, तो अब आप किसी, यानी कोई काम अच्छा है तो ये बताने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये मज़ेदार है। नमाज आप बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा नमाज में मज़ा आता है, नमाज मज़े की होती है। अच्छा, मज़े की होती है तो उसका मतलब अच्छी होगी, इफ़ इट इज़ मज़ेदार इट इज़ डेफिनेटली अच्छा। ये वो क्राइटेरिया है जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो क्या इस, क्या इन टर्म्स में उसको डिस्क्राइब किया गया है? ये तो कहा गया है नमाज मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है का मतलब क्या है? नमाज मोमिन की मेराज है का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी थी सहाबा कराम को कि जब सहाबा को पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ़ लेके गए, अल्लाह ने उन्हें इनवाइट किया और उसके बाद जन्नत दोज़ख और सब चीज़ें देख कर वापस आए, तो ख्वाहिश पैदा हुई कि आप तो अल्लाह से भी मिल के आ गए, आप तो ये सब, तो हम कैसे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, और हमें एक ख्वाहिश पैदा हुई। तो किसी ने इसका इजहार तो नहीं किया इस तरह से, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश को भाप कर सेटिस्फाई करने के लिए कहा, भाई तुम्हारी तुम्हें मेराज का तजर्बा नमाज से हासिल हो सकता, क्योंकि नमाज मुलाकात ही तो है तुम्हारी, मैं उस तरह मिलकर मुलाकात करके आया हूँ, तो तुम्हारी भी मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो नमाज है, नमाज मुलाकात है तुम्हारी, तो ये तो कहा गया। तो मज़ा जो है, मज़ा जो है वो असल में यूँ समझिए कि आप किसी तजर्बे को, अगर हम किसी एक्सपीरियंस को सेंसरी डोमेन से बाहर ना निकलने दें तो वो मज़ा कहलाएगा। यानी अगर हम किसी एक्सपीरियंस को सेंसरी कह लीजिए डोमेन से एक्सीड ना होने दें, यानी देखिए तखय्युल जो है वो एक अलग चीज़ है, यानी हिस्सी तजर्बा जो है ना, मज़ा जो है बहुत छोटी चीज़ होती है, मज़ा जिसे हम कहते हैं, यानी मज़े की सबसे छोटी चीज़ जो टेस्ट बड्स जो आप सबसे ज़्यादा जो आप देखिए कि मज़ा, तो मज़ा एक हमारी ज़िंदगी का जौहर मज़ा शनासी में नहीं है, हमारी ज़िंदगी का जौहर जो है वो तसव्वुर शनासी में और मानी आफरीनी में, हमारी ज़िंदगी कुछ और, यानी इस वक्त हम एक मज़ा शनास सोसाइटी के अंदर खड़े हैं ना, हम मज़ा मरकज सोसाइटी यानी प्लेजर सेंटर्ड सोसाइटी का हिस्सा है ना हम, जिसके लिए प्लेजर मैक्सिमाइजेशन और प्लेजर का उसूल बहुत बड़ी चीज़ है, और चूंकि प्लेजर और कन्वीनियंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इन दोनों को ही शामिल कर लीजिए, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं। तो जबकि नमाज के अंदर भाई, नमाज जो है वो तुम्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देती है, तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्शन का बाइस बनती है। असल में देखिए, किसी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हर दफ़ा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। आपकी आँख से जब दो कतरे निकल जाते हैं तो दो कतरे निकलने से पहले का इंसान और दो कतरे निकलने के बाद वाला इंसान, इसमें फ़र्क होता है या एक जैसा होता है? फ़र्क होता है। उसके दिल में तूफ़ान आता है और वो तूफ़ान उसकी आँखों से दो कतरे बनकर टपक जाता है। उससे पहले का आदमी, उसके बाद का आदमी में फ़र्क होता है। तो या उसे एक शौक़ लगता है उसकी एक, तो प्लेजर जो है वो एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन नमाज आपके लिए सेटिस्फाइंग होती है। नमाज से मिलकर आपको लगता है कि हाँ मेरी, मतलब नमाज आपको अपने आपको एक दूसरे तरह का एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन मज़ा तलाश करना है कि इसमें मज़ा आए, तो ये लेकिन चूंकि आज हम इसी जगह पे खड़े हैं तो हम नमाज को मज़े के ही सेंस में,
ये मज़ा इतनी बड़ी कदर बन गया, इसकी रूट कॉज क्या है? क्या हम मतलब हर चीज में से बोर जाते हैं?
रूट
ह्यूमन हिस्ट्री में अभी हो रहा है ऐसा?
हाँ, असल में इसमें जो दुनिया में जो बड़ी तहजीबें हैं वो उनके दो पैराडाइम्स रहे। एक तहजीब वो थी जो डिवाइन गाइडेंस के साथ किसी लेवल पर कनेक्टेड थी और उसके नतीजे में एक तहजीब पैदा हुई। दूसरी तहजीब वो थी जो रैशनैलिटी के एक्सपीरियंस से निकल के आई थी, ठीक है। उसमें खैर जो है वो रैशनैलिटी डिफाइन कर रही थी, एक में खैर जो है वो डिविनिटी डिफाइन कर रही थी। ये दोनों तहजीबें काफ़ी हद तक ठीक थीं। हम इस वक्त जिस तहजीब में खड़े हैं, जिसे हमें तहजीब नहीं कहना चाहिए बल्कि बद तहजीबी की तहजीब कहना चाहिए, ये बहुत रीसेंट हुआ है, जिसके अंदर हमने हमने जो हमने वजूद की सबसे छोटी जहत को वजूद की असल समझकर उसकी तकमील और उसकी सेटिस्फैक्शन के सामान ढूंढे, तो जिसमें हम मज़े की तरफ आए। मतलब देखिए, मैं बताऊं आपको कि आज से, यानी इस वक्त जो आपके लिए अहमियत मज़े को हासिल है वो पहले कुछ और चीज़ों को हासिल रही है। यानी आपको पता है इस वक्त मज़ा जो है वो मज़े की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। जो मज़ा जिसे हम कह रहे हैं ना, मतलब उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। आप अपनी जितनी आपकी चादर है उससे ज़्यादा आप पाँव फैलाते हैं, वो मज़े की खातिर फैलाते हैं ना आपको। तो आप क्या कहते हैं, कोई इसमें दुश्वारी तो नहीं महसूस हो रही? हम मात कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
काफी भारी है
ये सारी बात, भारी। हाँ, मैं यही सोच रहा
हूँ,
मैं बोर हो रहा
हूँ। तो
जब एक बच्चा ये कहता है आज के दौर में, या नौजवान ये कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो हमें दो तीन चीज़ों में देखनी चाहिए। अगर वो मोनोटनी से बेजार हुआ है तो इसमें परेशानी की बात नहीं, हम कहें ठीक है तुम कुछ और कर लो, इसको कर कर के, मतलब मैथ्स कर कर के तुम्हारा दिल भर गया है तो चलो ज्योग्राफी निकाल लो, शायरी निकाल लो, पेंटिंग निकाल लो, कुछ और कर लो।
हाँ,
तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। और अगर इसी तरह वो किसी काम को करना नहीं चाह रहा तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ इस वजह से ये बात कह रहा है कि उसे वो मज़ा ढूंढ रहा है, तो वो ट्रैप हो जाएगा और वो बहुत, मतलब वो एक, यानी वो एक अलग, उसको उस जगह से निकलना चाहिए। तो हमें जब ये कहते हैं ना इसको बोर हो रहा है, तो बोर होने से क्या मुराद है? मतलब ये कोई जी बिल्कुल, यानी मिसाल के तौर पर वो एक, यानी वो ये चाहता है कि हर वक्त उसे ऐसा लगे कि वो लतीफ़ा सुन रहा है। اگر اسے لطیفہ مطلب وہ ایک ہر وقت ایک کامک اور ایک تفریح والے موڈ میں رہنا چاہتا ہے, وہ ہنسنا ہسانا جو ہے اور مزہ جو ہے وہ اس کو سپریم ویلیو کے طور پر لیے ہوئے ہے, اس کو دیٹ از اوکے, دیٹ از ونڈرفل. مونوٹنس نہ
ہو,
اور
یعنی نماز میں بھی جیسے کہتے ہیں سب کے جی اگر آپ کا دھیان بہت زیادہ شیطان بٹوا رہا ہے تو آپ کانسٹنٹ رہیں اس پہ, آپ نماز پڑھیں, نماز چھوڑ نہ دیں گی میری چونکہ توجہ بڑھ گئی ہے تو میں ایک نماز چھوڑ دوں گا, چلو دوسری نماز چھوڑ لوں گا, ایسا نہیں, وہ تو فرض ہے, وہ تو آپ کو پڑھنی ہے, تو مزہ ہر چیز میں نہیں ہو سکتا.
تو مزے کو معنویت پہ مقدم جاننا یہ پرابلم, اور بالکل اچھا جب بچے کی زندگی میں پہلی دفعہ بوریت کا احساس ہوتا ہے آج کے دور میں نا, وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے, اس کو ہمیں کسی آرٹیفیشل چیز سے ختم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یعنی ہمیں اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بور ہو رہے ہیں, چلیں بہت خوشی ہوئی, ہاتھ ملائیے اور کہیے بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ, مطلب اب تو میں کیا کروں, یہ تم خود فیصلہ کرو کیا کرو, تم سوچو کیا کرنا ہے, تو وہ کچھ سوچے گا, کچھ ڈھونڈے گا, کچھ تلاش کرے گا, اور یعنی اب ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ انہیں بوریت سے بچائیں, پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری یہ بنا لی ہے کہ میں انہیں بوریت سے بچاؤں, یعنی ان کو کسی بامانی زندگی کے قابل بناؤں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, مجھے انہیں مسلسل بوریت سے انہیں کنٹینیوسلی انٹرٹین کرنے کی ارینجمنٹس مجھے پیدا کرنے ہیں, یہ پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری, میں انہیں بوریت سے بچاتا رہوں, میں کون ہوتا ہوں بوریت, تمہیں بور ہو رہے ہو ٹھیک ہے ڈھونڈو سوچو, تو وہ ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے گا, کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرے گا, کچھ ایکسپیریمنٹ کرے گا, کچھ تھنکنگ کرے گا, کچھ تو وہ جو پیریڈ ہے نا وہ جو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایک بیریئر ہو, لیکن اس کے بعد جب وہ ایک مستقل اس حالت میں ہوگا تو پھر وہ اس کے اندر وہ دیکھیے وہ جو ایمپٹینیس ہے نا وہ تھوڑی سی کنسنٹریشن کے نتیجے میں وہ ایمپٹینیس نہیں رہے گی, وہ پھر فل ہو جائے گی, پھر وہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ہم یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ آج سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ایک نوجوان کی زندگی میں کتنی تفریحات ہوتی تھیں,
پہلے کتنی سمپل زندگی تھی اور تب بھی بچے اتنے اچھے اور انٹیلیجنٹ اور وہ سارے آفیسرز نکلتے تھے, سی ایس ایس بھی کرتے تھے اور پیک پہ پہنچتے تھے, تو پہلے کی زندگی کتنی سادی تھی, صبح اٹھے آپ نے نماز پڑھی, آپ نے ناشتہ کیا, آپ اسکول چلے گئے, اسکول سے واپس آئے مدرسے میں یا تو گھر ہی میں آتی تھی مولانا لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, اور یا پھر بچے وہاں سے چلے جاتے, اس کے بعد آپ نے شام کے وقت مغرب کے وقت نے کھانا کھایا اور ٹی وی نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, ٹیلیویژن نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, کیسے تھا, اتنے سمپل اور اتنے ہیلدی لوگ ہوتے تھے, تو وہ بھی تو زندگی تھی, وہ بھی یہی دن تھے, یہی راتیں تھیں,
صحیح
ہے, خود الجھایا اپنے آپ کو یہ بوریت تھی, اب تو چھوٹا بچہ کہہ رہا تھا میں بور ہو رہا ہوں, 2 سال کا بچہ 1.5 سال کا بچہ کہہ رہا تھا
بور ہو رہا, یعنی بور ہو رہا ہوں کا, اگر یہ جو 4 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کو ریفریز کریں, یعنی مجھے آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ مجھے کانسٹنٹلی انٹرٹین کریں اس میں بریک آ گیا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو مجھے کنٹینیوس اور کانسٹنٹ پلیجر دینے کی جو آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ اس کو نبھا نہیں پا رہے, میں انٹرٹین نہیں ہو رہا, تو اب ایکچولی وہ یہ کہہ رہا ہے, جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ کارٹون لگا لیتے ہیں, اچھا یہ کر لیتے ہیں, اچھا یہ کر لیتے ہیں, تو یہ سب تماشا ہے, लेकिन देखिए ये जो तजर्बा था ना कि एक इंसान आसमान को देखे, सितारों को देखे, पौधों को देखे और वेदर को फील करे, नेचर को फील करे, अपने आप पे गौर करे, ये तो उसको यानी ये उसके लिए इंगेजिंग नहीं रहा, इसलिए कि ये उसे इंटरटेनिंग नहीं लगता. इफ़ इट इज़ नॉट इंटरटेनिंग इट इज़ नॉट इंगेजिंग. यहाँ पे है ना वो, यानी इंगेजेबल एक्सपीरियंस सिर्फ वो है जो कि इंटरटेनिंग हो. तफरी और बस तफरी होनी चाहिए, तो एक यानी उसको मज़ा नहीं आ रहा. आप एक किसी बच्चे से पूछें बेटा आप क्यों, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्यों भाई मेरे दादा का इंतकाल हो गया परसों, उसके बाद 3 दिन से बोरियत ही बोरियत है, क्यों बेटा क्या? तो पहले तो वो सब लोग दादा को मतलब लेकर आए, उन्हें नहलाया धुलाया, उनको कफन वफन पहनाया, फिर सब लोग बैठ कर उनकी बातें करने लगे. मैं दादा की बातें कर करके थक गया, बोर हो गया, फिर दादा को वहाँ ले गए कब्रिस्तान, वहाँ दफनाया, उसके बाद से रोज़ाना कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं तो बोर हो रहा हूँ. तो वो बोर हो रहा है, तो या तो दादा मरने से पहले एक लतीफ़े की किताब सराहने रख लेते और कहते जैसे ही मेरा इंतकाल हो तो तुम लोग ये लतीफ़े पढ़ पढ़ कर सबको सुनाना बच्चों को, ताकि मेरे मरने का अमल लोगों के लिए बोरियत वाला ना बने. तो हम मतलब हैं, या नमाज जनाजा की जगह महफिल लताइफ मुनक़द कर लेना. तो ये क्या यानी ये कैसी लाइफ है कि बच्चा बोर हो रहा है? ये बच्चा बोर हो रहा है और तुम्हारी बोरियत मिटाने की मुझ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी तरबियत की मेरे ऊपर ये है कि मैं तुम्हारी बोरियत मिटाने के सामान करूं. हम यहाँ खड़े हो गए आकर, ये क्या लाइफ है? और हम वो भूल गए कि ज़्यादा जो कहकहे हैं वो दिल को मुर्दा कर देते हैं. हम ये भूल गए, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है. ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा होने का मतलब ये है कि वो इनसेंसिटिव हो जाता है, उसकी एम्पैथेटिक यानी वो जो एम्पैथी की जो कैपेसिटी है वो उसकी कमज़ोर हो जाती है. एम्पैथी जो है, हाँ और कोई कुछ कह रहा था, आप कुछ कह रहे थे ना? कोई और? अच्छा सॉरी प्लीज आप बताइए भाई. आप
ज़हन की साख कैसी है कि वो सोचता है, वो रीजन और लॉजिक तलाश करता है, यानी माहनियत तलाश करता है, क्योंकि उसकी साख कैसी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. तो ऐसा क्यों होता है कि मजे के जो भी यानी कि वो मीनिंगलेस चीज कर रहा है लेकिन वो उसकी लॉजिक या रीज़न पर उसको ना परख सके और एक मायने खेज चीज़ नहीं कर रहा और उसकी लॉजिक और रीज़न को ना परख सके, तो लॉजिक या रीज़न का क्या रोल होगा?
बहुत खूब, बहुत खूब. एक चीज़ चूँकि अब सवाल आ गया तो मैं इसको ज़रा सा डिस्क्राइब कर दूँ. देखिए हमारा जो नफ्स होता है उसके दो यानी बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी तबीयत और हमारा जहन, हमारे वजूद के अंदर दो बहुत अहम डोमेन्स हैं. एक को हम तबीयत कहते हैं, एक को जहन कहते हैं. जहन जो है वो नाफे गैर नाफे, खैर और शर, अच्छे और बुरे, अहम और गैर अहम, सही और गलत, सच और झूठ, इनको डिस्टिंग्विश करने का कह लीजिए ऑर्गन है. और तबीयत जो है वो अच्छा लगना और बुरा लगना, मज़ा और कह लीजिए आप मज़े के उलट कोई लफ्ज़ कह लें बेजारी, हाँ बदमज़ा, हाँ तो इन चीज़ों के लिए मतलब ख्वाहिश और जज्बात और एहसासात, इनको हम तबीयत के अंदर रखते हैं. जिबिल्लतें, ये सब हमारी तबीयत के अंदर हैं. तो हमारा जो अच्छे अखलाक पैदा होते हैं वो उस कंडीशन में पैदा होते हैं जब जहन इल्म से मुनव्वर हो जाए और इल्म से मुनव्वर होने के बाद तबीयत पे हावी रहे, तबीयत मगलूब हो और जहन गालिब हो और जहन इल्म से मुनव्वर हो. اس کے نتیجے میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور برے اخلاق اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب طبیعت ذہن پر غالب ہو. طبیعت ذہن پر غالب ہے تو برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اگر اس ذہن میں علم موجود ہے اور طبیعت ذہن پہ غالب ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے. اگر اس ذہن میں علم موجود نہیں ہے, ذہن علم سے خالی ہے اور طبیعت ذہن پر غالب ہے, ذہن مغلوب ہے اور طبیعت غالب ہے, تو وہ ایک کہہ لیجئے کہ بہت ایک برا معاشرہ پیدا ہوتا ہے, بہت برا معاشرہ پیدا ہوتا ہے. ہماری جو اس وقت کنڈیشن ہے ہماری سوسائٹی کی, اس میں ہماری جو طبیعت کی فورسز ہیں انہوں نے ذہن کی فورسز کو مغلوب کر لیا ہے, اور ذہن کے اندر علم برائے نام ہے. مطلب اس وقت جو ہمارے ذہن کی حالت ہے اس میں علم بھی بہت کم ہے اور طبیعت جو ہے وہ غالب ہے. مطلب ہماری زندگی کا منہج, ہمارے زور ذہن سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ ہمارے زور طبیعت سے پیدا ہوا ہے. ایموشنز ہیں, انسٹنکٹس ہیں, اس میں بہت سارے ایسے پہلو. یہ پرابلم یونانیوں کے اندر, یونانی ایک الگ پرابلم میں تھے. یونانیوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ذہن کو ہر سطح پر طبیعت پہ غالب رکھنے کی کوشش کی تھی, اور جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے جو طبیعت کے رجحانات تھے ان کو ریشنلائز کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی انہوں نے اگر ان کی طبیعت کسی نہیں, آج تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم جگہ ہے نا, یعنی یہ یونانیوں تو بہت آگے تھے. یعنی میں اس میں ایک بات بتاؤں, جیسے مثال کے طور پر افلاطون کی اگر ہم بات, یونانی دور کا سب سے بڑا آدمی افلاطون اگر ہم کہیں, افلاطون بہت بڑا آدمی تھا ان کا, تو افلاطون جس طرح اخلاق کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور افلاطون کے اپنے عمل میں قباحت کے جو ڈیمانسٹریشن ہے, یہ دونوں اپنی سپریم پر ہیں. یعنی آپ حیران رہ جائیں گے آپ. یعنی تو ہمارے یہاں تو ایسا, ہم بہت عجیب سی کنڈیشن میں اس وقت. ہم صرف اور صرف اپنے جبلی تقاضوں اور اپنے طبعی میلانات کے سہارے زندہ ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم. یعنی ہمیں دیکھیں, اگر میں یوں کہوں ہمیں اچھا کیا لگتا ہے اور ہمیں برا کیا لگتا ہے, ہم اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے, اس کے زور سے اپنی زندگی کو متعین کرنا نہیں چاہتے. یعنی ایک زندگی بھی ہوتی ہے, ایک آدمی کہے کہ یہ اچھا ہوتا ہے, اس کا ایک تصور خیر و شر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک تاثر پسند و ناپسند ہوتا ہے. تو وہ اپنے یعنی مجھے اچھا کیا لگتا ہے, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہی اچھا ہوگا, جو مجھے برا لگتا ہے وہی برا ہوگا. یہ ایک کنڈیشن ہے نا انسانی سوسائٹی کی. دوسری سوسائٹی کی کنڈیشن یہ, اچھا یہ ہوتا ہے اور برا یہ ہوتا ہے, مجھے لگے یا نہ لگے. ہم ادھر نہیں کھڑے ہوئے, ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اچھا مجھے لگتا ہے وہی اچھا ہوگا, جو مجھے برا لگتا ہے وہی برا ہوگا. یعنی وہ چیز مزے کی نہیں ہے اور وہ اسے ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ مزے کیا. میں اگر آپ کوئی ایسے ऐसे कैंडी, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जो मज़े की ना हो और आप ये कहें कि ये मज़े की है, तो लोग उसे कबूल करेंगे? हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। सही, अपने साथ यानी अपने आप को बर्दाश्त करें, अपने आप को गवारा करें, अपने आप के साथ रहें। असल में जब हम किसी और के साथ होते हैं तो हम अपने साथ नहीं होते। आप अपने आप से उस वक्त मिलेंगे ना जब आप होंगे और आप होंगे, ठीक है? तो जब कोई दूसरा नहीं होगा तो फिर आप अपने आप से बात करेंगे, ठीक है? तो आपको अपने अंदर अपने आप से मिलने, अपने आप को समझने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो। मिसाल के तौर पर जो डायरी राइटिंग का तजर्बा है वो आप चौक पे बैठ के तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो तो आप तन्हाई में करेंगे। जो तहज्जुद का तजर्बा है वो भी आप तन्हाई में करेंगे। दुआ जो आप मांगते हैं, यानी अगर आप लोगों से मांगना चाह रहे हैं तो सबके सामने दुआएं मांगेंगे, लेकिन अगर आप वाकई खुदा से मांगना चाह रहे हैं तो फिर आप अकेले में मांगेंगे। मतलब तो आप अकेले में मांगेंगे ना, मतलब
एक रशियन आर्टिस्ट की बात है कि मुझे उन नौजवानों पे तरस आता है जो अपनी ही कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सुभान अल्लाह, ये बात, ये वाली बात। तो जब आपको बोरियत महसूस हो तो आप उन तीन चीज़ों में देखिए, क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी की मानवियत क्या है, ठीक है? होता यह, जैसे मैंने बोर्डम को सबसे पहली डेफिनेशन मैंने बोर्डम की वो दी कि जब आपके पास मोहलत अमल मौजूद है लेकिन अमल सुझाई नहीं दे। बोरियत उस तजर्बे का नाम है जब खुदा मोहलत अमल तो दे देता है लेकिन मुझे अमल सुझाई नहीं देता। ये सबसे आसान तरीन, यानी सरप्लस मोमेंट्स हैं लेकिन कोई मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के लिए की तौफीक मुझे नहीं है, ठीक है? मेरे पास वक्त मौजूद है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसका इस्तेमाल क्या करूं। अब वक्त मुझे काट रहा है, यानी मसरूफियत से आदमी इतना नहीं थका है आज का, यानी जितना वो अपने आप को बोरियत से उसने अपने आप को हलकान किया हुआ है। यानी अभी तक देखिए, मसरूफियत के नतीजे में जो बीमारी पैदा हो रही है वो स्ट्रेस वगैरह के नाम से हम कह रहे हैं, लेकिन जो बोरियत की बीमारी है उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है इनके पास। मतलब एक वो हम, आप चीप इंटरटेनमेंट पे जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं। अब फेसबुक भी प्लेजरेबल बनेगा ना आपको, आपको अच्छा लगेगा कि सेल्फी आपको अच्छी लगेगी। अब सेल्फी जो है, यानी सेल्फी जो है, ये अगर आप 100 साल पहले के आदमी को ये बताएं कि एक आदमी रोज़ाना दिन में 20-20 दफ़ा अपनी तस्वीर खींचेगा और ऐसा इंसानों के अंदर कई अरब लोग करेंगे और दुनिया की 70-80% आबादी ऐसी हो जाएगी, तो उसे यकीन ही नहीं आएगा। वो शायद खुदकुशी कर ले इस खौफ से कि मैं ऐसे ज़माने में ना पैदा हूँ। वो उसे समझ ही नहीं आएगा। ये तो आज का, आज की रियलिटी है ना। तो ये, तो अब आप क्या करें कि आप ये सोचेंगे मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? असल में बात यह है कि जब आपके जहन, आपका जहन उन सवालों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता जो कि वर्थ कह लीजिए रिफ्लेक्टिंग अपॉन क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप बोरियत के तजर्बे से गुजरते हैं। आपके पास सोचने के लिए कोई एजेंडा बाकी नहीं रहा, आपके पास समझने के लिए कोई एजेंडा बाकी नहीं रहा। आपके पास टाइम तो है लेकिन जहन जो है वो अपनी सोचने, समझने, गौर करने पे आमादा नहीं है, और तबीयत जो है वो मज़ा ढूंढ रही है। अब तबीयत को मज़ा कैसे दूं, तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं नूडल्स ही खाना शुरू कर देता हूँ, आइसक्रीम ही खाना शुरू कर देता हूँ। चलो यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। चलो यार फ्रेंच फ्राइज मंगवाते हैं, बोर बहुत हो रहा है। या भूख लग रही है तुम्हें? नहीं यार भूख तो नहीं लग रही, लेकिन बोरियत बहुत हो रही है तो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। बोरियत बहुत हो रही है तो कोक पी के आ जाते हैं। बोरियत बहुत हो रही है तो सिगरेट पान खा लेते हैं, कुछ और खा। तो खा, क्योंकि खाने से भी ना टेस्ट बड्स को प्लेजर मिलता है, ठीक है? या अपनी तस्वीर खींच के उसको देखते हैं, या लोगों की गीबत करते हैं। गीबत कितनी मज़ेदार काम है, गीबत से बहुत अच्छा लगता है। गीबत, गीबत में मज़ा आता है या नहीं? मतलब अगर कोई आदमी कहे मुझे गीबत में मज़ा नहीं आता, तो मतलब ये फिर यानी इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को नफ़से इंसानी के लिए मरगूब बनाया है आप उससे इनकारी हो रहे हैं। गीबत तो है मज़ेदार, मतलब तो ये क्लियर हुआ कि हमें क्या करना चाहिए।
हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी तलाश नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल,
मतलब हर किसी को अल्लाह ताला कुछ ना कुछ देके ही भेजा है, बेमकसद तो नहीं भेजा।
सही बात,
बाद में शेर भी शायद इसको मैं याद नहीं आ रहा, मन में डूब कर पड़े सुनावे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता नाम अपना तो बना।
सही बात। और बताइए, और ऐसा कोई सवाल कोई बात?
Sometimes अपने आप से मुलाकात always positive भी नहीं होता, वो negative भी होता है कि इंसान negativity की तरफ भी जाता है, तो ऐसे में सामने वाले भी help करते हैं। जो entertainment की बात हो रही थी वो भी जैसे sports की बात करें, जो भी चीज़ ठीक है, तो उसमें अपने आप को involved रखने से वो जो आपका मोमेंट होता है ना, जिस मोमेंट में आप अपने आप से मुलाकात तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं आप, बिल्कुल आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने से मेरा ये ख्याल है कि हम थोड़ा सा अपने आप को भी और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाते हैं, देन फिर हम अपने आप से जब मुलाकात करते हैं तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। इज इट लाइक दैट, ऐसे लेना चाहिए?
हाँ, असल में ये होता है बाज़ुकात जहन में एक पर्सपेक्टिव जम जाता है, बसेरा डाल लेता है जहन में कोई लॉजिक पेडिस्टल जो है वो बसेरा, यानी जहन में एक पर्सपेक्टिव ऐसा जड़ पकड़ गया है वो निकल ही नहीं रहा, और वो पर्सपेक्टिव ऐसा है जब आप जहन ने एक लेंस को बिल्कुल पकड़ लिया है, अब उस लेंस से चीज़ें देखो तो नेगेटिव नज़र आती हैं, अब आप अपने आप से मिल रहे हैं तो वो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, लेकिन आप अपने जहन को ये काम, जहन को बार बार देखने और विल पावर और अपने आप को, ठीक है मैं मतलब मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ये कौन से लेंस से अपनी मामलात को देख रहा हूँ। आप एकदम देखें ना, कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप बेदिहानी में सुबह उठें और अपना चश्मा लगाने की बजाय दादी का चश्मा लगा लें, और दादी का चश्मा मतलब करीब का हो और आप दूर का लगाते थे और वो बहुत मोटा सा हो, तो अब आपको सब उल्टा सीधा नज़र आ रहा है, तो अब आप फौरन समझ जाएं कि भाई ये चश्मा गलत लगा हुआ है, चश्मा अपना लगाऊंगा तो चीज़ मतलब। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी हम जो नेगेटिव होते हैं उसकी कुछ वजूहात होती हैं, और वो हमारे अंदर ही कुछ ऐसी गड़बड़ होती है जिसको हम ठीक करें।
हम उस फिर जाके हम उस चीज़ को वैसे देखते हैं, जैसे वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि हम लोगों की नज़र से अपने आप को देखते हैं, अपनी नज़र से नहीं देखते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि अपनी नज़र से तो मुझे तो लगता है वो इंटेंट ठीक है, सब सही जा रहा बिहेवियर, लेकिन फिर अचानक पता चलता है सामने वाला कहता है कि नहीं आप तो सही नहीं हो, क्योंकि लोग आपको ऐसे नहीं देख रहे हैं, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, तो फिर ये वाली बात क्या है?
हाँ देखिए, सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो दो जिम्मेदारियां निभाता है आपके मिलने वालों में। पहली जिम्मेदारी तो ये है कि वो आईना बने रहने का फरीजा अंजाम देता है, दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो आपको खुद यानी खुद आगही की बसीरत और बीनाई अता करता है, यानी आपके अंदर वो ऐसा लेंस इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करता है जिससे आप अपने आप को देख सकें। ऐसा इंसान जिससे मिलने के नतीजे में पहले मरहले पर मैं अपने आप को, यानी आपसे मुलाकात के नतीजे में मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह देख पाया, ठीक है, ये पहला फरीज़ा है। दूसरा काम यह है कि आपसे मुलाकात के बाद अपने आप को देखने, टटोलने, समझने, गौर करने, पहचानने की सलाहियत मेरे अंदर बेदार होती चली गई, ये हायर लेवल है। तो ये दो लेवल्स पर ये इंसान का जो है ना, यानी मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुसलमान के लिए आईना बना रहे, ठीक है, और यानी वो बहुत फ्रैंकली और बहुत ओपनली ये बता सके कि क्या है मतलब मामला। तो मेरे में नहीं, सही बात,
सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है आज तक के दौर में यही हो रहा है, अपने आप को नहीं देखना।
सही बात,
सही बात।
बल्कि दूसरों की सारी गलतियां बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं हर आदमी। तो या तो यही एग्रीमेंट कर लें कि भाई चूंकि मैं अपनी नहीं कर सकता तो आप मेरी कर दिया करें, मैं आपकी कर दिया करूं, इस पर ही राजी हो जाएं तो भी मामला हो जाएगा बेहतर। सही बात। ठीक है, चलिए तो आज की नशिस्त हमारी यहाँ पर कंक्लूड होती है। वो कोई और बात अगर कोई जहन में, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ऐसी बोरियत के तजर्बे दे जिससे हम अपने आप की यानी अपनी दरियाफ्त के यानी ऐसी बोरियत जो अपनी दरियाफ्त की तहरीक बरपा कर सके, ऐसी बोरियत के कीमती तजर्बे से हमें नवाजे। ठीक है, जज़ाकअल्लाह।